तो बाबा कह रहे थे, दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन करने की शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह सामना करने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, मरा और स्वर्ग गया, उस मरने से तो कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? तो बाबा कह रहे हैं, बहुत करके क्या कहते हैं, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे वो लोग कहते हैं ना, मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है। मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को। बाबा कहते हैं दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना मानो। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। तो बाबा कह रहे हैं स्व परिवर्तन की बातें, बहुत करके क्या कहते हैं, मुझे ही मरना है। तो बाबा ने कहा ये मरना नहीं है। वहां कहते हैं कि मरा और स्वर्ग गया, स्वर्ग में कोई जाता नहीं, परंतु ये जो मरना है उसमें स्वर्ग में उच्च पद श्रेष्ठ सीट पानी है। एक दूसरा, मुझे ही बदलना है, ये बदलना नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में बदलने को बढ़ना, तो ये बदलना नहीं है, ये बढ़ना है। मुझे ही सहन करना है, बाबा ने कभी कहा है जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। तो ये मरना, ये सहन करना, ये बदलना, बदलना बदलना नहीं, बढ़ना है। सहन करना नहीं, शहंशाह बनना है। और मरना, मरना नहीं परंतु उच्च पद पाना है। तो पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। आज भी कहा ना बाबा ने, दीवार, ईंट की दीवार खड़ी कर देते हैं। एक है होना चाहिए, करना चाहिए, तो उसमें मुझे करना ही है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना ही है। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है। स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, किस रूप में? खुशी। दूसरी, बाप द्वारा, बाप द्वारा दुआएं। तीसरी, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है उनके द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना, तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा तो क्या कहा बाबा ने इस मुरली में? पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करो। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो पवित्रता का व्रत, व्रत लेंगे तो वृत्ति परिवर्तन होगी। तो व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना। आत्मा सभी भाई भाई है, जितना और उतना बाबा ने कहा इससे परे हो जाओ। जितनी पवित्रता चाहिए, जितनी शक्ति चाहिए उतनी नहीं है। अब ये भाषा बंद करो, क्योंकि पवित्रता अगर फाउंडेशन है और अगर अतींद्रिय सुख नहीं मिल रहा है, स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं हो रहा है, तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। तो ये भाषा अभी परिवर्तन करो। फिर बाबा ने यहाँ फुल स्टॉप लगाने के लिए भी कहा है, और आ चुका है वो कि ये जो कहते हो मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है और मुझे ही सहन करना है, ये वास्तव में इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है। परंतु ये मुश्किल लगता है, उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बारे में कहा है, अगर दूसरा गलत है तो क्या करो? एक, अगर दूसरा ग्लानि करे तो क्या करो? और दूसरा कोई संस्कार की टक्कर हो तो क्या करो? इन तीन बातों पर बोला है आज। अगर दूसरा कोई गलती करता है तो, वो रॉन्ग है तो क्या करो? आप राइट रहो, आप उसके रंग में नहीं रंगो, आप उसके प्रति रहम की दृष्टि रखो। वो तो परवश है, आप रहम की दृष्टि रखो। संस्कार की टक्कर होती है तो साक्षी रहो, स्वतः उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। कोई ग्लानी करता है तो फूल पुष्प चढ़ाओ। कोई 10 कहे और आपने एक कहा तो, आपने एक बोला तो वो भी दिन बूंद है ना, वो पुष्प तो नहीं हुआ ना। तीनों बातें कही आज बाबा ने, कौन सी मुश्किल है उसमें से? अगर कोई रॉन्ग करता है तो वो ठीक है फिर भी, पर कोई ग्लानी करता है तो, निंदा करता है तो, अपमान करता है तो, उस समय अचल अटल रहना मुश्किल है। तो चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्यों में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मिल रहे हैं। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं क्यों खुश होते हैं? दादियों को देख खुश होते हो ना, क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशंस व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। वाइब्रेशंस और कर्म द्वारा, आज भी बाबा ने कहा जो भी कर्म करते हो, सिंगल सेवा नहीं हो, डबल सेवा, रोटी बना रहे परंतु स्मृति स्वरूप होकर, परंतु गुण मूर्त होकर, तो जो भी सेवा करो डबल सेवा, मनसा से शक्तियों का दान करते चलो, तो वो महान स्थिति होगी। मतलब कर्म साधारण परंतु स्थिति महान। तो दादियों के लिए बाबा कह रहे हैं कि अपने वाइब्रेशंस और कर्म द्वारा खुशी देती है साधारण कर्म, परंतु वाइब्रेशंस श्रेष्ठ है, इसलिए खुश होते हो ना। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। फिर बाबा टीचर से कह रहे हैं, फॉलो भी करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वे तो आपके हमजींस हैं ना, तो जब वे सब बन सकती है तो आप नहीं बन सकते हो? आज भी बाबा ने कहा सब कौन हो तुम? मधुबन के सेवाधारी, मधुबन निवासी अर्थात सेवाधारी। तुम सबसे बड़ा सेवाधारी कौन है? ब्रह्मा को कहा बाबा ने, बेहद का सेवाधारी। तो जैसी उसकी बेहद की वृत्ति, उसकी दृष्टि बेहद की, उसका देखना बेहद का, उसका सुनना बेहद का, स्थिति बेहद की, त्याग बेहद का, वैराग बेहद का, उसकी सेवा बेहद की, संस्कार बेहद की, संबंध संपर्क में आता है वो बेहद का, तो फॉलो फादर करो। वो मधुबन का बाबा है, उसको मधुबन का बाबा कहा है। तो जैसा उसका सब कुछ देखना सुनना, दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ बेहद का, संस्कार संकल्प विश्व कल्याण का, तो जैसे उसका सब कुछ बेहद का है, तो तुम भी उसकी संतान हो, तो तुम्हारा भी सब कुछ बेहद का हो। तो कई सोचती है कि बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हमजिंस है ना, ये तो निमित्त आत्माएं मतलब दादिया, तो जब वो बन सकती है तो आप नहीं बन सकते हो। ये मधुबन में ही क्या कहा बाबा ने, कोई बॉम्ब फूटता है तो वातावरण में परिवर्तन होता है, तो मधुबन में तुम अंडरग्राउंड हो, यहां से कोई एक बॉम्ब तुमको हाँ, तो ऐसा कोई तो नई चीज लाओ, वो हर चीज नहीं, वाइब्रेशंस जो हो हर चीज नहीं हो, जैसे कि अमृत वेला में क्या नया संकल्प, क्लास सुनते समय क्या विशेषता, दिन भर कर्म करते हो उसमें क्या विशेषता, नुमा शाम के योग में क्या विशेषता, रात में जब चार्ट लिखते हो तो उसमें क्या विशेषता, ये 6-7 बातों सब में, ये जो अंडरग्राउंड रहकर ये बॉम्ब ये परिवर्तन सारे विश्व में ऐसे वाइब्रेशंस फैले कि कुछ तो नवीनता हो हर चीज में, ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, कोई विशेष ग्रुप बनाओ। बाबा ने कहा जैसे पहले पुरुषार्थियों का ग्रुप बनाते थे, वैसे अभी ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिसमें परिवर्तन हो। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किसमें उठवाएंगे, 16 कला, तो 16 कला का अर्थ क्या है, संपूर्ण है ना, 16 कला अर्थात संपूर्ण। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं बनना ही है। छोटी छोटी बातों से घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो क्या लगेगा, हैमर, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेगी, मूर्ति बन रही है तो कौन से हैमर लगेंगे, परिस्थिति समस्या विघ्न संस्कारों की टक्कर, सारे विघ्न आएंगे, ग्लानी निंदा अपमान कमेंट्स टॉन्ट्स, ये सब हैमर है
जो मिट्टी वाला बनाता है उसमें,
ये मूर्ति वो मिट्टी की मूर्ति वो मृण में वो अलग, ये मूर्ति है पत्थर से बनाई जाती है मूर्ति, कठोर पत्थर से, जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, आगे रहोगे तो तूफान ज्यादा आएंगे, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता तोहफा लगता है, स्टॉर्म जो है वो गिफ्ट बन जाता है, ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना, तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है ना या मुश्किल लगता है, सौगात लेने के लिए तो भागते हैं सब, सबसे आगे में, तो ये कौन सा तोहफा है, तूफान जो आगे रहेगा उसको सबसे ज्यादा सौगात मिलेगी, तो ये भी लेना है देना नहीं है, अभी लेना तो सहज है तो देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है, तो ये छोटी छोटी बातें इनसे घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना। कोई एक विदेश का व्यक्ति भारत आया, उसको एक इच्छा थी कि ये जो मूर्तियां भारत में बनती है बहुत सुंदर बनती है, जो विदेश में भी जाती है कैसी बनाई जाती है मूर्तियां, वो ढूंढते ढूंढते एक मूर्तिकार के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि मुझे मूर्ति कैसे बनाई जाती है, वो प्रक्रिया वो जो प्रोसेस है वो मुझे देखनी है, इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाई जाती है। तो वो कहता मैं बना रहा हूं देखो, तो वो बैठ जाता है तो देखता है वो पत्थर होता है बहुत बड़ा और वो उसको छेनी और हथौड़ा उससे वो तैयार करता है, तो वो विदेशी कहता है कि मूर्ति कहाँ है, मूर्ति तो मूर्ति बनाओ ना, ये तो पत्थर है, मुझे मूर्ति कैसे बनाई जाती है वो देखना है, तुम तो ये पत्थर को तोड़ रहे हो, तो वो कहता है मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति तो उसमें छिपी हुई है, मुझे तो केवल उस व्यर्थ पत्थर को अलग करना है जो उसमें जुड़ा हुआ है। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति तो आविष्कृत होती है, डिस्कवर की जाती है, इन्वेंट नहीं की जाती है, अनावृत खाली उसको उघाड़ा जाता है। मूर्ति तो है ही उसके अंदर, छिपी हुई है, केवल मुझे उसको प्रकट कराना है। तो उसके लिए हैमर लगेगा, हथौड़ा छेनी से उसमें जो अनावश्यक पत्थर है बस उसको हटाना है। यज्ञ की मूर्ति हो तो मूर्ति बनने के लिए दादी को ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई मूर्ति। दादी सुनाती है मुंबई में जब थे तो कहीं जाना होता था तो आधा बस से और आधा पैदल, पैसे बचाने के लिए, कहीं दूर जाना होता तो आधा बस और फिर वहां से पैदल। यज्ञ की मूर्ति बननी है ना तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो ये सहन करना नहीं, सहनशाह बनना, ये मरना नहीं है, ये उच्च पद पाना है, ये बदलना नहीं है, ये बढ़ना है, ये तूफान नहीं है, ये सब तोहफे है। नहीं, नहीं, एक शब्दावली बनानी पड़ेगी, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये देना नहीं है, देना तो मुश्किल है, ये तो लेना है जो कि सहज है। तो ये नहीं सोचो कि मेरा पार्ट ही क्या, मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या, सब मैं ही सहन करूं, सब मुझे ही सहन करना है। एक किताब है इंग्लिश में, Why me? मैं क्यों, मेरे पास ही सब क्यों कुछ होता है। तो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्न के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या, वेलकम करो, आओ, क्या करो विघ्नों को वेलकम। वो गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मुश्किल बड़ी है, उसमें आगे एक शब्द है ना, मुश्किलों से कर खैर मकदम, खैर मकदम अर्थात वेलकम करना, उसका स्वागत करना। आए जो तूफान आंधी कर उनका खैर मकदम, उनका खैर मकदम करना अर्थात ये आंधी ये तूफान ये मुश्किलें आए उनका क्या करो, वेलकम करो, स्वागत करो, आओ भगत करो। तो वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है इसमें क्या, ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना है अर्थात हैमर लगना, हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। बाबा कहते हैं कि जब तुम वो मटका लेने जाते हो तो उसको भी ठोक ठोक के देखते हो, दो आने का मटका, तो दो आने का कुछ होगा, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दे रहा हूं तो ऐसे ही दे दूंगा क्या, एक एक को ठोक ठोक के देखूंगा कितना कौन मजबूत है। आप लोग तो अनुभवी हो गए, नथिंग न्यू, खेल लगता है। कल परसों की मुरली में भी था ना, नथिंग न्यू, जब से ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो कितनी गालियां खाई, पहले नहीं खाई थी, तो ये भी नथिंग न्यू। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो, टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जो कि कठिन प्रश्न होते हैं, बस एक ऐसा प्रश्न होगा, बाकी 10 प्रश्न ठीक, पर एक प्रश्न ऐसा होगा जो कि वही प्रश्न से फिर पास होने वाले तो पास हो जाएंगे, पर जो रैंकर्स जो टॉपर्स आने वाले हैं उनका सब कुछ उस एक प्रश्न पर आधारित है। फिर जो दो तीन लोग हैं जो सबसे होशियार है उनमें से कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है वो उस प्रश्न के आधार से पता चलता है, बाकी तो पास तो होने वाले हो जाएंगे, पास होने वाले तो बहुत है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है, ये तो सोचा ही नहीं था, यहां आने के बाद भी ऐसा, हमने तो सोचा ही नहीं था, यहां पर भी ऐसा होता है, ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। परिस्थिति आमंत्रण देकर नहीं आती है, कोई भी विघ्न निमंत्रण नहीं देता है, पहले विपदा आपत्ति सीधे आती है, कोई पूर्व का संदेश नहीं देती है कि मैं आ रही हूँ। डबल फॉरेनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच सोच कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। जितना भी कोई कैसा हो, बाप दादा अच्छाई को ही देखते, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेंगे? और ब्राह्मण 9 अच्छाई है और 1 बुराई है, यही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। तो चाहे 9 बुराई है लेकिन 1 अच्छाई, तो बाप क्या कहेंगे? अच्छा है या कहेंगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है, क्या कहेंगे बाबा? क्या कहेंगे? अच्छा है। कभी किसी क्लास में सुना था, हिस्ट्री हॉल में बाबा मिल रहे थे, तो कोई एक भाई था जो कि कोई पुरुषार्थ नहीं करता था, सबकी निंदा ग्लानी इस तरह के काम करते थे। तो जब बाबा पर्सनली हिस्ट्री हॉल में सबसे मिल रहे थे, तो अव्यक्त तो सबको लगा कि अभी बाबा इससे क्या कहेंगे, सबको लगा शायद बाबा जरूर इसको कोई शिक्षा देंगे, कुछ तो इसको बोलेंगे। तो जब उसकी बारी आई तो बाबा ने 5 मिनट उससे बात की और इतनी महिमा की उसकी कि सब सब आश्चर्य हो गए, सबको थोड़ा दुख हो गया। सबको लगा बाबा कुछ तो शिक्षा दे इसको, कुछ तो समझाए इसको कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों से लोग आए। अच्छा है, हाउसफुल है। ये मुरली 93 की है, तो ओम शांति भवन। 21 देशों से आए हैं। अभी तो इतने ऐसे हम कभी सुनते नहीं, अभी हम जो सुनते हैं 60 देश, 70 देश, 100, 150, इस प्रकार के फिगर्स हम सुनते हैं अभी। तब हाउसफुल है, 21 देशों से आए हैं। बाबा ने कहा है कभी सागर के बच्चों को ये दीवारें रोक नहीं सकती। हाँ, बाउंड्री में कब तक रहोगे? बेहद है, हद नहीं है, सीमाएं नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, सीमातीत बाप के बच्चे हैं, सीमाएं इन्हें रोक नहीं सकेगी, सबको आना है इधर। हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। कभी 83 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारत भर के सारे पत्रकार आए थे, 80 पत्रकार आए थे, पत्रकार इतने प्रश्न पूछे कि बोलने ही नहीं दिया। जो मंच पर जगदीश भाई और न्यूयॉर्क के मोहिनी बहन थे, एक वर्ड बोलने नहीं दिया उनको, इतने प्रश्न 80 पत्रकारों ने परेशान कर दिया मतलब। और अभी 2000 पत्रकार आके बैठते चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक शब्द नहीं बोलते, पूरा सुनते हैं। तो वो एक समय था और ये एक समय है। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, हाउसफुल तो हो तब तो दूसरे बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाएगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है अंग्रेजी में। आवश्यकता है तो साधन को सामने लाएगी। तो ये थी अव्यक्त वाणी। तो अभी क्या कहा दादियों से बाबा ने, यहाँ पर मुश्किलें, विघ्न, समस्याएं सभी क्या है? हैमर है। हमारी सबसे ज्यादा उन्नति जो होती है, वो सबसे ज्यादा जो परिपक्वता आती है, वो किसमें आती है? परिस्थितियों से गुजरने के बाद। जितनी ज्यादा परिस्थितियों से जो गुजरा है, उतना वो परिपक्व है। लास्ट 3 दिन के स्लोगन नाजुक परिस्थितियों के ऊपर चल रहे हैं। नेचर को शक्तिशाली बनाओ, पास के डोनर अगर होना है तो कल भी, तो ये सारे जो है, ये जो नाजुक परिस्थितियां है, वो हमें परिपक्व बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। उसमें गुजरने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे। वो एक इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक को एक बार स्ट्रेच कर दिया तो वो अपना पुराना जो साइज है वो रिगेन नहीं करता है। वो एक बार स्ट्रेच हो गया तो मन भी ऐसा है, परिस्थिति से गुजरने के बाद वो बढ़ जाता है, वो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन जो है वो नहीं रहता है, वो कुछ और होता है। उसमें और अनुभव समाये जाते समाये हुए होते हैं। तो जो भी परिस्थिति है इसके लिए बाबा ये जो शब्द है बाबा के कि तूफान तोफा लगे, बहुत राज है इसमें। क्योंकि हमने देखा है कि अगर 10 साल तक किसी में कोई परिस्थिति नहीं आई और 1 साल में परिस्थिति आ गई तो वो परिस्थिति उसे अनुभवी बना देगी, ऐसी अनुभवी बना देगी कि जो 10 साल में जो नहीं सीखा वो 10 दिन में सीख जाएगी आत्मा। ऐसी भयंकर चित्त के सामने परिस्थिति आ गई। ब्राह्मणों के सामने जो हिसाब किताब है वो एक तो शारीरिक बीमारी के रूप में आएगा, या किसी के टकराव के रूप में आएगा, या किसी के कोर्ट केसेस उसके रूप में भी आ सकता है। कोर्ट में कोई केस चल रही है वो भी एक हिसाब किताब ही है, लंबा लंबा चलते रहता है। जैसे वो भाई का चल रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया तो अभी तक भी चल ही रहा है, वो तो खाली उसके साथ में था, ड्राइवर के साथ में हमारी जो गाड़ी आ रही थी। हर महीना कोर्ट में जाओ, 2-3 घंटे वहां रुको, साइन करो, वापस आ जाओ अगली डेट अगली तारीख। तो ये भी हिसाब किताब ही है। तो ये सारे जो हिसाब किताब आ रहे हैं ये सब हमें कुछ ना कुछ देने के लिए आ रहे, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे। उनको उस रूप से लेना है कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीखूं। तो ये सब हैमर है जो कि जिससे मूर्ति तैयार हो रही है। बाबा ने कहा इससे पाठ पढ़ो और आगे बढ़ो, ये तुम्हें बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, परिपक्व बनाने के लिए आए। क्या कहा? ये यज्ञ में अगर देखा जाए तो आगे कौन है? जिसमें जितना मैंपन कम उतना ही वो आगे है। हाँ, ये सोच को ही परिवर्तन करना है कि एक्चुअली ये है सारी लड़ाई मैं की लड़ाई है। कोई कोई कभी कोई एक व्यक्ति भगवान के द्वार पर पहुंचा, भगवान के द्वारपालों ने कहा बोलो कौन हो, तो कहता है मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, सब कुछ, बीवी बच्चे धन संपत्ति मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं इसके लिए आया हूँ सब कुछ छोड़ के। उन पार्षदों ने कहा हमें सब कुछ से कोई मतलब नहीं, तुम मैं अभी भी लेकर आए हो मैं छोड़कर आया हूँ ना। उसने कहा नहीं, मेरी झोली तो पूरी खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, धन जमीन जायदाद जो कुछ था सब कुछ छोड़कर मैं भगवान के पास आया हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी झोली में तुम खुद हो इस समय, तुम्हारी झोली में मैं है, तो जब तक मैं है तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ तो मैं को परिवर्तन करना है, सारी लड़ाइया जो है वो इस मैं की है। तो हैमर लगेंगे, तो जब आएंगे हैमर तो क्या समझना है, मूर्ति बन रही है, और जितने ज्यादा हैमर उतनी सुंदर मूर्ति। पहले बड़े बड़े हैमर, फिर छोटे छोटे हैमर, छोटे छोटे जितनी सुंदर आंख कान नाक, तो और ज्यादा हैमर लगाने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई इतना 12-10 साल तक सहन ही करते आए अभी तो हैमर बंद हो जाए, पर अभी उसका रिफाइनिंग अभी और ज्यादा सुंदर बन रही है मूर्ति। तो छोटे छोटे हैमर लगेंगे एकदम सुंदर बनाने के लिए, जितनी जो ज्यादा सुंदर उसको उतने ज्यादा हैमर। जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, एक होती है सर्जरी कोई यहाँ पर आपको अगर कट गया, एक होता है अगर आप अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, अगर आप जो सीख रहा है उसके पास जाओ तो वो 2 टाके लगा देगा और काम खत्म, बड़े बड़े, वो भी दर्द के साथ। छोटे डॉक्टर के पास, थोड़ा एक्सपर्ट के पास जाओ तो 2 की जगह फिर 4 लगाएगा उधर, पर वो अच्छा दिखेगा। फिर जो 2 लगाएगा वो निशान हमेशा के लिए रह जाएगा। आप थोड़ा सर्जन के पास जाओ तो वो 5 लगाएगा, पर आप प्लास्टिक सर्जन के पास चलो जाओ तो 100 टैकल टकर लग जाएगा, पर इतने छोटे छोटे कि आपको दिखेगी भी नहीं, फिर बाद में वो साफ हो जाएंगे, पर वो 100 लगेंगे तो जितने ज्यादा उतना वो सुंदर, इतने सूक्ष्म लगाएगा तो दर्द तो होगा तो परिस्थिति विघ्न समस्याएं ये सब भी एक प्रकार का हैमर है, क्योंकि मूर्ति तैयार हो रही है। खेल स्मृति और विस्मृति का है, खेल ही स्मृति और विस्मृति का। तो ये सदैव याद रहे कि मूर्ति तैयार हो रही है और ये सारे जो है तूफान जो भी है वो तोहफा अनुभव हो। तूफान से एक बार गुजरने के बाद हम अनुभवी बन जाते हैं, दूसरों को राह बता सकते हैं कि ये तूफान आएगा तो क्या क्या कर सकते हो। हमें ये अनुभव नहीं, एक होता है दूसरों के अनुभव से सीख जाना, पर जब हम खुद उस अनुभव से गुजर जाते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। और लास्ट में बाबा ने क्या कहा यहाँ पर, बाप दादा सभी की अच्छाई ही देखते हैं। तो कोई अगर रॉन्ग भी करता है तो अच्छा ही देखना। जैसे आज की मुरली में तीन जो बातें हैं, अगर कोई रॉन्ग करता है तो क्या करो, अगर कोई ग्लानी करता है तो क्या करो, अगर संस्कारों की टक्कर होती है तो क्या करो। आज की मुरली के लास्ट तीन पैराग्राफ इन तीन बातों पर है। तो जैसे बाप दादा सभी की अच्छाई देखते हैं, वैसे हमें भी सभी की अच्छाई ही देखनी है, चाहे भले उसमें कितनी ही बुराई हो। बाबा जब नौ बुराई है तो एक अच्छाई को देख लेता है, तो हमें भी। ये तो सभी ब्राह्मण आत्मा है, अगर हम देखे संसार में रोज यहाँ कितने पर्यटक आते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, भगवान को पहचाना नहीं पहचाना। अगर उनसे तुलना की जाए तो जो यहाँ रहने वाले हैं और यहाँ की जो सेवाधारी है और यहाँ जो भट्टियों में आ रहे हैं वो कितने महान है उनकी कंपेरिजन, उनकी तुलना में। वो तो बस आए और गए, आए और गए, रोज आ रहे हजारों लाखों और जा रहे। तो उनकी अगर तुलना की जाए तो ये कितने महान है कि जिन्होंने भगवान को जान लिया, एक पवित्रता को समझ लिया, धारण कर लिया। एक तरफ अज्ञान, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ विज्ञान। कल मुरली में था ना, वो तो है अज्ञानी, ये तो ज्ञानी भी है और विज्ञानी भी है। विज्ञान अर्थात याद की यात्रा, विज्ञान अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, बनने का बनाने का प्रयत्न तो कर रहे। ज्ञानी तो हो गए, सृष्टि को तो समझ लिया, सृष्टि चक्र को तो समझ लिया, तो उनकी तुलना में ये महान है। तो एक तो भगवान को जाना पहचाना, दूसरा पवित्रता को धारण किया, और तीसरा संकल्प से, मन से, तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया। ये तीन विशेषता सभी ब्राह्मणों में है, इसके लिए वो सभी महान है। फिर उनमें बहुत सारी कमी कमजोरियां है, बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं, परंतु वो महान है फिर भी, क्योंकि बाबा यही देखता है। तो हमें भी वही देखना है जो बाप देखता है, इसे कहा जाएगा बेहद की दृष्टि। अच्छा, ओम शांति।